इंशाल्लाह ताला दिलों में वुसत पैदा करनी है, ना तो बगैर इजाजत के जाना है, ना बगैर इजाजत के आंखें दाखिल करनी है किसके घर में, और ना ही बगैर इजाजत के कान दाखिल करने हैं। ठीक है, किसी का फोन सुनना, किसी बाज दफा ऐसे हो जाता है कि ये जो हमारे पास सेल फोन्स हैं, कई एक दफा बटन दब गया आपसे, किसी के घर में डायल हो गया, उन्होंने आगे से उठाया, आपको पता ही नहीं है कि किसी के घर में डायल हुआ, आप अपने घर में बातें कर रहे हैं, दूसरा बंदा कहता है चलो अच्छा सुनती तो हूं क्या बातें हो रही, अच्छा मौका। तो ये भी दूसरे की प्राइवेसी के अंदर दखल अंदाजी करना है। ठीक है, एक लाइन दूसरे ने मिलाई हुई या दूसरी चुपके से आपने उठा ली, क्या अगर दूसरे के घर में दाखिल होना मना है और नजर उसके घर में डालना मना है, तो ये बात मना नहीं है कि आप दूसरे की बात सुने? ये नकब लगाना है, ये चोरी है, इसका हक किसी ने नहीं दिया। तो ये इसको भी चोरी समझना चाहिए, चाहे आप ये कानों से की गई चोरी है ये समझ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने भाई की इजाजत के बगैर उसके खत पर नजर डाली वो आग में झांकता है, आग में। तो यहाँ पे तो खत की बात हो गई, उसके उस वक्त जमाने के अंदर तो ईमेल्स और चैटिंग और फोन नहीं होते थे, वरना उसकी भी कोई बात होती। ठीक है, तो आग में झांकना, सोचें जरा, ये आग है जो सिर्फ यानी उसको पकड़ लेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला इन अहकामात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब अल्लाह की नजरों का एहसास होगा तो फिर ही ये अहकामात हम अमल करने में अमल में ला सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला घरों को पुरसकून बना सकते हैं इन अहकामात पे अमल करके। अब देखें आगे, कुल लिल मुमिनीना, कह दीजिए मोमिन मर्दों से, आदमियों के लिए, मोमिन मर्दों के लिए ये हुक्म है। नंबर वन, या गुद्दू मिन अबसारिहिम, कि वो बचा के रखें अपनी नजरों को। मैंने आपको बताया कि गद का मतलब क्या है, कमी करना, कम कर लेना। अब कमी करने का मतलब क्या, नजरों की कमी करना क्या होता है, यानी ये नहीं कि घूर घूर के देखें, ये नहीं कि जी भर के देखें, ये नहीं कि गौर गौर से देखें। ठीक है, निगाहों को तूल ना दें, कम कर लें, यानी देखते ही ना रह जाएं, जिसको नजरबाजी करना होता है, क्या कहा जाता है, तो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, निगाहों को उस जगह पे ना लेकर जाएं जहां पे देखना हराम है। अपनी नजरों में से, यानी बाज नजरें ऐसी होती हैं जहां पे जो सही नहीं होती, जहां पे जानी चाहिए नहीं वहां पे डाली जाती हैं, तो उनसे मना किया गया है कि कम कर लें, बचा के रखें अपनी नजर को, खुला ना छोड़ें, आवारा ना छोड़ें। ऐसे ना करें कि अभी ऐसा खुला छोड़ा हुआ है कि जरा देखें यहाँ पे खवातीन आ रही हैं, शादी पे आ रही हैं, जरा बाहर खड़े के देखा जाए कि एक औरत आ रही है तो जरा उसको नजारा किया जाए, ये नहीं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ नजर है, सिर्फ नजर डालने को भी मना किया गया, कोई कुछ कमेंट्स नहीं है, देयर इज नो कमेंट, कोई चक्कर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नथिंग, सिर्फ नजर डालना भी मना है क्या? जी हाँ, यहां पे ये बात हमें बता के पता चलता है कि इस्लाम का मिजाज क्या है, इस्लाम कैसे सद्दे जराए करता है। आप कहते नजरों से क्या होता है, कोई कौन सा किसी को पीछा कर रहे हैं, कौन सा किसी को कुछ कह रहे हैं, कौन सा किसी के साथ कोई अफेयर चला रहा है, कुछ भी नहीं है। हमारे रब ने हमें इससे भी मना किया, क्यों? अकलमंद तो हम इतने हैं कि हम तो ये सोचते हैं कि नहीं, जब ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलत बात है इसके अंदर, जब ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर क्यों नहीं? अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है। मैंने आपको क्या शुरू में बताया, अला यालमु मन खलक, क्या उसको ही नहीं पता होगा जिसने पैदा किया? उसको पता है कि नजर से ही काम शुरू होता है। ये हुक्म देकर, चाहे कोई कितना ही अपने आप को पारसा कहता है, नहीं जी जी मेरी नजरें ऐसी नहीं, मेरे तो नजरों के अंदर मैं कौन सा कुछ और करता हूँ, यानी वो नजरबाजी ही करता है, सिर्फ देखता ही है और कुछ नहीं करता। लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि नजरें कहाँ तक ले जा सकती हैं इंसान को। इन आयात को जो ये जैसे यहाँ पे भी आई है, ये नजर को नीचा रखने की बात, ये सद्दे जराए कहलाती हैं। सद मतलब बंद कर देना, जरा ये रास्ता जो जाता है ना उस तरफ, उसको बंद कर दिया गया, उस सड़क को। जैसे आप देखते हैं आगे किसी सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, किसी सड़क पे आगे कोई मसला है, कुछ काम हो रहा है, वो शुरू में ही सड़क को बंद कर देते हैं। आगे जाके उनको पता है ना कि भाई लोग मुश्किल में पड़ेंगे, तो वो जहां से आपने टर्न लेना होता है वहीं पे उन्होंने वो रख दी होती है कि नहीं नहीं यहाँ पे नहीं जाना। इसी तरह ये चीज स्टार्ट है, ये उस सड़क पे ही नहीं अल्लाह ताला चाहते कि आप जाएं, जो आगे जाके किसी ट्रबल में डाल सकती है। ये नहीं कि हर कोई डल जाएगा, लेकिन ये डाल सकती है। नो वे, यहां से जाना ही नहीं है, बस बात खत्म हो गई। जब रब ने फरमा दिया तो फिर क्या मुश्किल है ये करना। नहीं, नजरों की हिफाजत करो, नजरें ना आवारा घूमे, नजरें इधर उधर ना जाए, नजरें उन चीजों के ऊपर ना पड़े जो या तो छुपी हुई है या वहां पे नजर डालने को अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। उनको देखना और देखते चले जाना, इसको मना कर दिया गया। हाँ, ये बात जरूर है कि जो पहली नजर है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो माफ है। जैसे कि इंसान एक किसी चीज के ऊपर नजर डालता है तो फिर क्या होता है, एकदम पता नहीं था, एकदम नजर चली गई, एकदम किसी के ऊपर नजर पड़ गई, उसके बाद जी पता चला अच्छा नहीं 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 यहाँ पे नहीं देखना चाहिए था, फौरन नजर हटा ली, वो एक अलग बात है। पहली नजर फिर माफ है। वो कुछ लोग कहते नहीं जी तो पहली नजर के बाद दूसरी की तो नौबत ही नहीं आती, पहली नजर हटाएंगे तो फिर ही दूसरी बात आएगी ना। तो जब कह दिया गया या गुद्दू के अंदर ये भी बात आ गई, तूल ना दो, लंबा ना करो, मतलब क्या हुआ, टिकटिकी बांधे देखते ही ना जाओ, स्टेयर करना। और ये बीमारी तो हमारे मुल्क में तो इस कदर ज्यादा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम काफी इस चीज से कम अज कम बच जाते हैं। एक फिजिकली नहीं किसी को, बाकी जगहों पे कोई किसी क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा वो अलग बात है, मगर कोई किसी को स्टेयर करने को बुरा समझता है। मगर हम जो मुसलमान हैं, हमारे मुल्कों में इस कुरान को मानने वाले मर्द हैं, और ये आयत साफ तौर पे कुरान में है, और फिर भी ये बात समझ नहीं आती कि किसी को स्टेयर नहीं करना, किसी को घूर के नहीं देखना, किसी को गौर से नहीं देखना, किसी को जी भर भर के नहीं देखना, अपनी नजरों को झुका लो, आंखों में आंखें डाल के ना देखो। अगर कोई औरत बात भी कर रही तो ऐसे ना देखो कि आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं और देखते चले जा रहे हैं। आंखों ही आंखों में बहुत से पैगाम पहुंच जाते हैं, आंखों ही आंखों में चाहत के मैसेजेस दूसरे तक पहुंच जाते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूं, आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो कौन सी नजर को यहां पे मना किया गया? नंबर वन तो ये कि शहवत की नजर से नहीं देखना, कि ऐसे देखे जिससे कोई जज्बात दिल के अंदर पैदा हो, वो नहीं देखना, ठीक है। अब कोई कह सकता है नहीं जी हम तो ऐसे ही देखते हैं, हम तो ऐसे ही, फिर तब भी बेबाकी से देखना, जैसे कि आप मतलब किसके जिस नजर के अंदर कोई हया ना हो उसी तरह देखते चले जाना, ये सही नहीं है, इसी से मना किया गया। हाँ, ऐसे देखें जैसे कि मर्द मर्द की तरफ देखता है, आदमी उसकी परवाह नहीं करते, वो एक किसी के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, जाहिर है बात करने की भी जरूरत होगी, जाहिर है किससे मामला डील भी करना होगा, तो फिर कैसे देखा जाए उस तरह से। या दूसरी कैसे इजाजत है कि भाई जिसमें हया हो, एहतराम हो। हमारे यहाँ ये भी एक बीमारी है कि चूंकि हमारा जो माशरा है इसके अंदर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, उसमें औरतों का कोई ज्यादा एहतराम की नहीं परवाह की जाती। अगर सामने सामने कुछ कर भी लेंगे तो बाद में इतनी बातें और ऐसी ऐसी बुरी बुरी चीजें कहेंगे कि औरत की कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसी नजरें जिसमें ना एहतराम हो या जिसमें हया ना हो, उस तरह से नहीं देख सकते। हाँ, डॉक्टर है कोई, उसको तो देखना ही है मरीज को, या कोई और ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर किसी को बचाना है, किसी का कुछ ऐसा मामला है, उसके अंदर, या फिर देखें हाँ ये भी होता है अदालतों वगैरह के अंदर या सिक्योरिटी वाले खड़े में हैं उनको देखना पड़ता है, तो उतनी हद तक इजाजत है, मगर उसके अंदर भी कोई शहवत की नजर ना हो, बस इस तरह की शनाख्त करनी है दूसरे की, किसी को भी जरा भी महसूस हो के अट्रैक्शन मुझे हो रही तो फौरन नजर फेरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली एक नजर के बाद दूसरी नजर ना डालो, क्योंकि तुम्हारी जो पहली नजर है वो माफ है, दूसरी नहीं, यानी दूसरी नजर आई जाएगी तब जब कहीं अट्रैक्शन मालूम होगी, और अट्रैक्शन अगर मालूम हो गई तो समझ लो कि फिर आप काम बिगड़ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान भी किसी औरत की तरफ पहली नजर डालकर नजर नीची कर लेता है अल्लाह उसके लिए ऐसी इबादत पैदा कर देता है जिसमें हलावत होती है, यानी इबादत में हलावत नसीब फरमाता है अल्लाह ताला उसको, उसको इबादत में मिठास आने लगती है, इबादत में मजा आने लगता है। तो नजरें क्या इतनी खतरनाक हो सकती हैं, नजरें क्या ऐसी हो सकती हैं कि जिनके ऊपर, हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नजर है ना वो इबलीस के जहरीले तीरों में से एक तीर है, तीर है ये जो इबलीस फेंकता है, क्योंकि आपने देखा होगा वो दिलों के ऊपर भी तीर लगा के वो किया होता है इस तरह। तो ये जो जो चीज नजर देखती है वो दिल के अंदर जाता है, वो दिमाग के अंदर जाता है, उसकी पिक्चर अंदर बनती है, वो बार बार इंसान के जहन में चीज आती है। तो दिल खुद तो नहीं ना देख सकता बाहर आके, दिल का दरवाजा क्या है, दिल तक रीच कैसे करती है कोई चीज, इस नजर के जरिए ही तो रीच करती है। तो जब नजरों की हिफाजत नहीं होगी और नजरें आवारा होंगी तो दिल नापाक होंगे, दिलों में ख्यालात नापाक जन्म लेंगे। कहते ना जो व्हाट द आईज एडमायर द हार्ट डिजायर्स, जो आंखें देख के ना उनको अच्छा लगता ना दिल उसकी तलब करता है। अब दिल को अंदर ये एहसास सोच पैदा होती है कि मैं इसको हासिल करूं या कुछ भी जो भी, तो अगर कोई अपनी नजरों की हिफाजत करता है तो देखें इसके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा इस रिवायत को बयान करते हैं कि क़यामत के दिन हर आंख रोएगी सिवाय उस आंख के जो अल्लाह की हराम की हुई चीज को देख के झुक गई हो, सुभान अल्लाह, और सिवाय उस आंख के जो अल्लाह के रास्ते में जागी, और सिवाय उस आंख के जिससे अल्लाह के खौफ से आंसू का एक नन्ना सा कतरा भी निकला। ये तीन आंखें हैं, या जिस दिन हर आंख रोएगी ये आंख नहीं रोएगी, यानी उस दिन इन लोगों को गम नहीं होगा। तो देखिए ये एक ऐसी चीज है जो अल्लाह का हुक्म भी है और जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने कितनी बड़ा इसको रिवॉर्ड बताया, और अभी ये कोई जिना नहीं कर रहा, ये कोई किसी को छू नहीं रहा, किसी को कुछ नहीं कर रहा, किसी से गलत बातें नहीं कर रहा, सिर्फ देख रहा है जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, जिसको जो हमारे यहाँ बिल्कुल आम है। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो इस पर बात कर ही लेते हैं, जो फिजिकली किसी को देखना होता है उसमें लोग फिर भी डर जाते हैं कि अगर किसी को देखेंगे ओ एकदम से ये ना हो कि उसकी तरफ से कोई बात सुननी पड़ जाए, कहिए क्यों देख रहे हो, या कुछ और डांट देगी या कुछ होगी। मगर स्क्रीन पे, फोन में, रिसालों में, ऐसी वेबसाइट पोर्नोग्राफी की, उनमें तस्वीरें जो भी हैं किसी किस्म की भी, चाहे हरकत करती हुई तस्वीर है या स्टिल तस्वीर है, रिसालों में बनी हुई है या कहीं है, ऐसी चीजों को देखने से भी फरमाया यकुद्दू मिन अबसारिहिम, जिनसे भी जज्बात में कोई तहरीक पैदा हो, जिनसे भी कोई लस्ट आए, उनको देखना मना है। तो हमारे यहां तो इसको कोई बुरा ही नहीं समझा जाता, सीन सामने चल रहे हैं, बड़े बड़े सीन वहां पे एयरपोर्ट्स पे, और बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हैं, उनके अंदर औरतों की ऐसी तस्वीरें हैं जो हिजान पैदा करें, और ऐसे ऐसे सीन आते हैं उनके अंदर जो इंसान के अंदर लस्ट पैदा कर सकते हैं, उनको देखते रहते हैं। और कौन शहवत की नजर से देख रहा है और कौन नहीं देख रहा, देखें ये तो अल्लाह जानता है, कोई और बाहर बैठा हुआ नहीं बता सकता। इस आयत पे वही अमल करेगा जिसको अल्लाह की नजरों का डर होगा, जिसका अल्लाह पे ईमान है कि अल्लाह दिलों के हालों को जानता है, दिलों में पैदा होने वाले हर ख्याल का इल्म उसको है ना, वो ही सिर्फ इस पे अमल कर सकता है। इसलिए कि किसी को पता ही नहीं, भाई एक आदमी देख रहा है किसी बिलबोर्ड की तरह देख रहा है, या किसी कोई सीन सामने चल रहा है उसको देख रहा है, या किसी रेस्टोरेंट में कोई टीवी लगा हुआ उसमें देख रहा है, वो किस चीज को देख रहा है, किस बॉडी पार्ट को देख रहा है उसके, या किस नियत से देख रहा है, क्या नजर में उसके आ रहा है, उसके दिल में क्या ख्याल पैदा हो रहा है, तो सिवाय अल्लाह के कोई और जान ही नहीं सकता। यालम खायनत अलआइन वमा तुखफी सुदूर, वो जानता है आयुन आंखों की खयानत को जानता है, जो दिलों में छुपा हुआ उसको जानता है। जिसको अल्लाह का खौफ होगा ना उसकी नजर झुकेगी, और जिसको खौफ है खुदा नहीं है, लोगों का खौफ होना तो लोगों को क्या पता चलना, तो उसको नहीं कोई परवाह होगी। तो सिर्फ औरतों की तरफ देखना ऐसे नहीं है सिर्फ, बल्कि ऐसे तमाम सीन्स इसमें आ जाते हैं, ऐसी तमाम पिक्चर्स इसमें आ जाती हैं जो जज्बात पैदा करें। और लोग खास तौर पर ऐसी चीजें देखते हैं जिनसे जज्बात भड़के, जिनसे लस्ट पैदा हो। अब अकेले में देखना भी मना है, सबके सामने तो जाहिर है मना ही है, अकेले में देखना भी मना है। और कोई ये नहीं कह सकता हम तो इतने बड़े हैं, मैं तो अब शादीशुदा हूं, मैं तो अब देख सकती हूं, या मैं तो अब देख सकता हूं। ये जो आयत है ना, ये इसी तरह पूरी की पूरी आगे औरतों के लिए भी आ रही है। इसलिए कोई ना औरत कह सकती है, ना कोई मर्द कह सकता है, नहीं हमें अलाउड है। किसने अलाउ किया? अच्छा लोग क्या करते हैं, हैरत ही वैसे मुझे अजीब सी बात लगती है, बच्चों को कहते हैं बच्चों को नहीं दिखानी ये फिल्म, ऐसी है बच्चे के बच्चों को देखने वाली नहीं, हम रात को देखेंगे मियां बीवी। तो आपके लिए क्या नहीं है ये, या उर्दू में नब्स आ रही है? ये किसने कहा कि आपको अलाउड है? बच्चे ना देखें लेकिन हमें अलाउड, आपको किसने अलाउ किया? अल्लाह अकबर। याद रखें इन्ना समा वल बसर वल फुआदा कुल्लुन उलाइका काना अन्हु मसूला, हम सूरह बनी इसराइल में पढ़ चुके, कान आंखें दिल हर एक से सवाल होगा, इन आंखों से क्या देखा, इन कानों से क्या सुनते रहे, और दिलों में क्या ख्यालात पैदा होते रहे, सबकी मसूलियत है। जो अपनी नजरों की हिफाजत करता रहेगा ना, उसी की हया कायम रहती है, और उसी को हलावत मिलेगी इबादत में। और जो जो नजरों को आवारा छोड़ देता है, बल्कि ढूंढता है कि नजरों के सामने ऐसी ख्वातीन आए, ऐसे सीन्स आए कि मैं उनको देखूं, उसका दिल नापाक हो जाता है, क्योंकि दिल तो नजर के पीछे चलता है, दिल का तो अपना कोई जोर नहीं है, दिल पे वही चीज नक्श होती है ना जाके, जो निगाह के जरिए अंदर जाती है। जैसे मुंह से हलाल निवाला खाते हैं तो हलाल पेट में जाता है, मुंह से हराम खाएंगे तो हराम जाएगा, इसी तरह नजरों से हराम देखेंगे तो अंदर दिल में हराम ही जा रहा है। आप मुझे बताएं, क्या मुंह में निवाला डालने से पहले तो बड़े इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं और देखते हैं हराम तो नहीं है ये, और नजरों का नहीं सोचते कि इनमें भी हराम का ख्याल रखना, कि इनसे हराम ना चीज अंदर जाए। आप देखिए न्यूज स्टैंड के ऊपर ऐसे ऐसे रिसाले रखे होते हैं, ऊपर ऐसे रखे होते हैं जिनमें कोई ऐसा ही सीन हो। अब अगर एक दफा नजर पड़ भी गई है तो हटा लें, अब उसके बाद दिखते की बांधे ना देखे जाएं कि जरा और पढ़ लूं, अच्छा क्या लिखा हुआ है, किस किस्म की खबर है। बल्कि आदमी को तो यह कहा गया कि अगर कोई औरत के ऊपर उसकी नजर पड़ जाती है और उसके दिल में कोई ऐसा ख्याल आता है, वो जाए अपनी बीवी के पास और उससे अपनी जरूरत पूरी करे। इसलिए कि जो इस औरत के पास है वो उसके पास भी है, वो भी तो एक औरत है ना, तुम अपनी बीवी के पास जाओ। ये वो चीज है या वो टूल है जिससे शैतान दिल के अंदर दाखिल होता है, शैतान को जगह मिल जाती है अंदर आने की, शैतान को आपने रास्ता दे दिया अंदर आने का जब नजरों को आवारा छोड़ दिया, नजरों पे कोई कैद ही नहीं, नजरें जिधर मर्जी घूम रही हैं। अल्लाह अकबर। इवन यहां तक हमें तो ये भी बताया गया कि कोई जिंदा या मुर्दा इंसान हो उसको भी नहीं देख सकते, उसकी रान को। तो आप ये बताएं कि जहां पे स्लीवलेस औरतें पहने फिर रही हूं, जहां पे उनकी आधी टांगे नंगी हैं, जहां पे उनको देखना कैसा है फिर, या जहां पे बनी समरी औरतें घूम रही हैं, और जब हम ऐसी मजलिस से मुनक्कद करते हैं जिनके अंदर औरतें मर्द एक साथ ही होते हैं, औरतें इतना इतना तैयार होकर घूम रही थी, मर्दों की नजरें अगर उनके ऊपर जा रही हैं, तो ना सिर्फ उन मर्दों का कसूर है बल्कि उन लोगों का भी कसूर है जो ऐसी मजलिस से मुनक्कद करते हैं, जो इस चीज का लिहाज नहीं रखते। अब कोई लोग कहेंगे लोग क्या हर एक की नजर गंदी है, आपका मतलब है कि सारे बुरे हैं, क्या ये है, हम फौरन ये चीज के ऊपर आते हैं ना, नहीं ये तो नहीं कहा गया हर एक की नजर बुरी है, हर एक की नजर ऐसी है, बस एक लॉ दे दिया गया, नजरों को नहीं डालना वहां पे जहां पे अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, बस बात खत्म हो गई। अब ये सवाल ही नहीं है कि अच्छा जी मेरी नजर के अंदर क्या है, उसकी नजर में क्या है, ये इस सर्जरी की करने की किसी को जरूरत नहीं है, ना किसी को ये अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि कोई पहले देखे जी किसकी नजर क्या है, अच्छा अब तुम्हारे लिए अलाउड है तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा थोड़ी है। बस एक कानून अल्लाह ताला ने दे दिया सबको, क्योंकि अल्लाह को पता है आदमी की क्या कमजोरी है, अल्लाह को पता है मर्द और औरत में अट्रैक्शन है, ये नेचुरल अल्लाह ने खुद रखी है, और फिर औरत अगर बन संवर जाए तो फिर तो फिर सोने पे सुहागा, फिर तो एक इन्विटेशन हो गया कि हाँ देखो मुझे, हम मर्द की फिर नजरें आवारा होती हैं, फिर उसकी नजर वहां जाती है जहां पे नहीं जानी चाहिए, ये चीज मजबूर कर देती है मर्द को। और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 वो ये तो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसलिए क्योंकि देखो आप शायरी उठा के देख लो, यहाँ शायरी को तो छोड़ें, आजकल जो जो भी एड्स हैं, फिल्में हैं, ये सब चीजें, उनमें क्या चीज को हाईलाइट किया जाता है, औरत को और औरत के हुसन में क्या चीज, उसकी फिगर को, उसकी बॉडी को नुमाया किया जाता है, जूम इन किया जाता है, तो देखें आप नजर का उठना इस कदर खतरनाक हो सकता है कि इसी से फिर आगे वो रास्ते चैनल खुलते हैं जिनसे फिर अल्लाह ताला माफ फरमाए कि जिना तक का तक इंसान चला जाता है। और बाज दफा कोई अल्फाज कहे बगैर ही सिर्फ निगाहों निगाहों के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो किसी अरबी शायर ने कहा था कि तमाम आफतें नजरबाजी से शुरू होती हैं, क्योंकि उसने कहा बड़ी आग छोटे छोटे शोलों से ही भड़कती है। देखे जो बड़ी आग भी ऐसे ही नहीं लग जाती, छोटे छोटे शोले होते हैं पहले, फिर ही बड़ी आग लगती है। तो जब ये चीजें होती हैं तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट जो बनता है वो पहले शुरू इसी चीजों से होता है। अब हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारे यहाँ जो इतना क्राइम इस चीज का बढ़ गया है, रेप्स का और ये सब चीजें, और बच्चों के साथ बुरा फेल करना, और ये सब इसीलिए, ये जब नजरें आवारा हो गई ना, नजरें हर किस्म की चीज को देख रही हैं, हर किस्म की चीज पे पड़ रही हैं, तो फिर उसके बाद ये तो होगा ही। और इसमें ना तो यहाँ पे कहा गया कि नहीं सिर्फ वो उन मर्दों के लिए जो जवान हो, सिर्फ उन मर्दों के लिए जो कंवारे हो, क्योंकि बाज लोग जो सोचते हैं जो शादीशुदा हैं और जो जरा जिनकी उम्र हो गई है, जिनके बच्चे जरा बड़े हो गए, उनको नहीं कोई, बस वो तो आजाद हैं और वो सबके ही अंकल हैं और वो सबके ही सब कुछ हैं, तो इसलिए इनका तो कोई नहीं, सबको हुक्म है, सबके लिए, ये नहीं हम कह सकते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अब बड़े हो गए हैं, हमारी तो एज इतनी है, नो, ये अल्लाह का हुक्म है, उसने इंसान को बनाया, उसको पता है, अल्लाह को पता है कि जो भी ये इसके ऊपर तवज्जो नहीं करेगा, नजरों से उनको आवारा छोड़ेगा, तो ये नजरें उस तरफ लेके जाएंगी जो आग से करीब कर देगी इंसान को, ठीक है। और आज हमारा हाल ये है कि जो ऐसे जो किस्से हैं ना, जो कि बुराइयों के हैं, जैसे लैला मजनू के, सोनी माहिवाल, रोमियो जूलियट, ये सारों को इतना हमने हीरो बना दिया है और इतना बड़ा हम ये उनको रोल मॉडल के तौर पे दिखाते हैं और उनके ऊपर इतना एडमायर करते हैं कि जैसे लगता है कि यही सबसे अच्छी चीज है, और वो भी चीजें देखने से ही शुरू होती हैं, देखते ही हैं तो फिर कोई चीज अच्छी लगती है ना, और वहीं से काम खराब होता है। तो गद्दे बसर याद रखिए इबादत है, इबादत है, ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ताला वही हुक्म देता है जो इंसान के लिए करना मुमकिन होता है। और जो इसमें कामयाब हो जाएगा, मैंने आपको बताया, उसको तो इबादत में भी हलावत मिलेगी, ये इटसेल्फ एक इबादत है। वो आंख उस दिन नहीं रोएगी जिस दिन हर आंख रो रही होगी, ऐसे मुत्तकी के लिए अल्लाह का दीदार होगा। और फिर रंज और गम से ऐसा इंसान महफूज रहेगा, दिल में एक नूर पैदा होगा जो चेहरे से आजा से टपकता होगा, अल्लाह ताला उसको फिरासत अता फरमाएंगे, जो कि इब्ने कय्यिम अल-जौज़ी ने ये लिखा हुआ है सारे फवायद अपनी किताब में, उसके अंदर फिरासत पैदा होगी, यानी चीजों को समझने की हिकमत, दिल को कुव्वत मिलेगी, दिल मुतमईन रहेगा, फिर वो हराम चीजों की तरफ नहीं बढ़ेगा, उसमें नहीं उसको लज्जत मिलेगी। जब इंसान गद्दे बसर का में के हुक्म के ऊपर अमल करेगा, तो ये आपने देख लिया कि सद्दे जराए में पहली चीज क्या है, नजर की हिफाजत, पहली चीज। और आपको मालूम है ना, अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा उस दिन जिन सात किस्म के लोगों को, उनमें एक वो भी है जिसको कोई हसीन कोई मालदार औरत अपनी तरफ मायल करे, लेकिन वो ये कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ। जब उसकी नजर आवारा होने लगे, वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला को की इजाजत नहीं है ये। हमारे यहाँ आजकल ऐसे भी मिलते हैं कि ब्यूटिशियंस हैं, दुल्हनों का मेकअप करते हैं, औरतें उनसे मेकअप कराती हैं, एक एक जो उसका शौहर भी शायद ना कभी उतना गौर किया हो जितने वो उसके चेहरे पे गौर करता है। और उसमें क्या इतमाल है, क्या इसका चांस नहीं है कि वो जो नजर डाल रहा है उसके अंदर फिर क्या हया होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के फितने से बचो, बेशक बनी इसराइल में पहला फितना औरतों से ही शुरू हुआ था। पता है पहले जमाने के अंदर ये कहानी थी कि जब ना कोई शिर्क होता था ना कोई कुछ होता था, तो ये शैतान ने ना जाके एक बस्ती की औरतें बेहद खूबसूरत थी और एक बस्ती के आदमी बड़े खूबसूरत थे, वो बस्ती वाले वो एक ऊंचाई पे रहते थे, वो नीचे की तरफ औरतें रहती थी, तो शैतान ने उनको कहा कि जाओ जाओ वहां पे, जाओ वहां पे कुछ उनको किसी काम से ना वहां पे मर्दों को भेजा। वहां पे उन्होंने इतनी हसीन औरतें जब देखी तो वो तो उनके दिल ने ललचाए, वो फिर यहाँ पे जो फिर फसाद पैदा हुआ उसके बाद, तो शिर्क तक तो बाद में लेकर जाता है शैतान, तो पहले इन्हीं चीजों से तो आता है, बेहयाई कराने से और बेहयाई के कामों से और कपड़े उतरवाने से। और ऐसे क्या किया था उसने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के साथ, कपड़े ही उतरवाए थे सबसे पहले। तो ये चीजें हैं ना, ये जब औरत अपनी हया की हिफाजत नहीं करती, मर्दों की भी फिर नजरें आवारा होती हैं। और अगर सारी औरतें पर्दे में आ भी जाएं, तो जाहिर ही बात है उस माशरे में कोई गैर मुस्लिम औरतें भी तो होंगी, इसलिए आदमियों को भी कहा गया कि गद्दे बसर करो। ठीक है, ये नहीं है कि भाई हाँ जहां पे सारे पर्देदार हैं वहां पे आदमी जिधर मर्जी देखे, नहीं, उनके लिए फिर भी ये है हुक्म। और दूसरा हुक्म, वयहफजू फुरूजहुम, और अपनी हिफाजत करो अपनी शर्मगाहों की, ये दूसरा हुक्म दिया गया, निगाहों को भी नीचे रखना है और शर्मगाहों की हिफाजत करनी है। सूरह मोमिनून के शुरू में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? आप ये देखें ना कि जब ये अपारा शुरू होता है कदफलहल मोमिनून, तो इसके अंदर आता है ना, वहुम ली फुरूजिहिम युहाफिजून, ऐसे है ना, वल्लजीना हुम ली फुरूजिहिम हाफिजून। तो पता चलता है वहां पे भी कि अगर फलाह पानी है, कामयाबी पानी है, तो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, और शर्मगाह की हिफाजत के लिए पहले नजर नीची होना जरूरी है, फिर ही शर्मगाह की भी हिफाजत होगी ना। ठीक है, पहला काम करेंगे तो फिर दूसरा काम होगा। इसमें अगर अपने बच्चे हैं, शौहर हैं, या कोई और भी है जिसके ऊपर आपको कुछ कोई आपकी बात कहीं मानी जाती है, तो इंसान कह के भी दूसरे को मना कर सकता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जब हज पे थे, तो अपनी सवारी के पिछले हिस्से पे हजरत फुजैल बिन अब्बास को बिठाया हुआ था, तो फुजैल बिन अब्बास बड़े खूबसूरत थे और सवारी पे भी बैठे हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और वो भी, तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मसाइल पूछ रहे थे और आप उनका जवाब दे रहे थे। तो एक बड़ी खूबसूरत औरत आई, वो भी आपसे सवाल कर रही थी, तो हज़रत फ़ुज़ैल उस औरत की खूबसूरती को देखते जा रहे थे, उनको अच्छी लगी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ के हज़रत फ़ुज़ैल को इस औरत की तरफ देखते हुए देखा, तो आपने उनकी ठोड़ी ना अपने हाथ से पकड़ी और उनका चेहरा उस औरत की तरफ से दूसरी तरफ फेर दिया। बाज़ दफ़ा ऐसे भी किया जा सकता है। और उस औरत ने फिर वो मसला पूछा था कि मेरा बाप बूढ़ा है, वो नहीं हज पे आ सकता, सवारी पे नहीं बैठ सकता, तो मैं उसी तरफ से हज कर सकती हूँ, ये वाला जो मसला था, ये बुखारी और मुस्लिम में। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम रास्तों में बैठने से बचो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, रास्तों में बैठने के सिवा तो हमारा गुजरान ही नहीं है कोई, हम मतलब ये तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास और यानी उनके पास कोई ड्राइंग रूम्स तो थे नहीं मुलाकात के लिए कि जहाँ पे बैठ जाते, तो वो जैसे हमारे मुल्कों में भी गलियों के अंदर लोग बैठे होते हैं वहीं पे बातें कर रहे होते हैं वहीं पे, तो इस तरह वो बैठ जाते थे। तो फिर आपने फरमाया अच्छा अगर तुम्हें बैठना जरूरी है तो फिर रास्ते का हक दो। तो उन्होंने पूछा कि रास्ते का हक क्या है? आपने फरमाया नजरें नीची रखना। ये नहीं कि जो जा रहा है उसको जब से वो एंटर हुआ गली में वहां से देखना शुरू किया और जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया उसको देखते ही रहे, ये नहीं, नजरें नीची रखना। नंबर टू रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर करना। नंबर थ्री सलाम का जवाब देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। और हमारे यहां तो पीछे गाने गाने शुरू कर देते हैं, शेर करने शुरू कर देते हैं कभी कुछ, ये तक हाल है। जबकि बताया कि अगर बैठना ही है तो इन चीजों का ख्याल करके बैठना, वरना मत बैठो, तुम्हारी नजर नहीं उठनी चाहिए। क्योंकि तो नजर जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आंखों का भी जिना होता है, और आंखों का जिना देखना है, जुबान का जिना बात करना है, और नफ्स फिर तमन्ना करता है, ख्वाहिश करता है, उसकी शर्मगाह फिर उसकी तस्दीक करती है या तकजीब करती है, ठीक है। तो यानी आंख का भी जिना होता है और वो देखना ही होता है आंख का जिना, तो कितनी ही आंखें हैं जो जिना करती हैं, और वो समझते हैं कि हम लोगों में तो बड़े पाक दामन है, लोगों को थोड़ी पता है मैं क्या कर रहा हूँ, किधर देख रहा हूँ, क्या मेरी नीयत है, और क्या मैंने इस ये नजर जो उठी थी और ये क्या लेकर आई है, ये किसी को भी नहीं पता। तो मैं लोगों में पाक दामन ही, किसी को भी ना पता चले, उस नजरों के मालिक को तो पता है ना। तो फरमाया अपनी हिफाजत करो शर्मगाह की, और जैसे पहले मैंने आपको ये बताया हुआ कि शर्मगाहों की हिफाजत में नंबर वन क्या चीज है, सतर को छुपा के रखना। मर्द का सतर क्या है, नाफ से घुटने तक, और उसमें घुटना इंक्लूडेड है। ये इतना सतर ना मर्द का मर्द के सामने खुले ना औरत के सामने खुले, ठीक है। मर्द मर्द के सामने भी अपने हिस्से को नहीं खोल सकता। और कहां ये कि टीवी के ऊपर जो दिखाते हैं, कहीं रेसलिंग हो रही है, कहीं स्विमिंग हो रही है, कहीं और स्पोर्ट्स हो रही हैं, या कहीं और तस्वीरें लगी हुई हैं जिसमें सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए, अब वो तो सारा सतर तो खुला हुआ है ना। तो अब कहा गया कि नहीं, ये खोल नहीं सकते, ये सतर है इंसान का, सिवाय अपनी बीवी या बांदियों के अलावा जो हम जैसे पढ़ चुके हैं। और एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूलल्लाह अगर आदमी अकेला हो तो फिर यानी कोई समझे मैं तो अकेला ही घर के अंदर हूं तो नंगा ही फिरता रहे, अकेला ही कमरे के अंदर हूं तो नंगा रहे, तो क्या हुक्म है? फरमाया अल्लाह ज्यादा मुस्तहिक है इस बात का कि उससे शर्म की जाए। रवाहु तिर्मिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, ये तीनों रिवायात, तीनों किताबों में ये रिवायत है। ये अल्लाह से नहीं शर्म आती फिर भी ना नंगे हो। तो कुछ लोग समझते नहीं घर पे कुछ कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नंगे होने से बचो, तुम्हारे साथ हर वक्त ऐसी हस्तियां रहती हैं जो तुमसे किसी वक्त भी अलग नहीं होती सिवाय रफा हाजत के वक्त या उस वक्त के जब तुम अपनी बीवी से कुर्बत कर रहे हो, लिहाजा तुम उनसे शर्म करो और उनकी इज्जत करो। वो कौन सी हस्तियां जो हर वक्त हमारे साथ रहती हैं सिवाय टॉयलेट के, और सिवाय जब आदमी अपनी बीवी के साथ यानी कुर्बत कर रहा हो उस वक्त, वो है फरिश्ते। उनसे तो हया करनी चाहिए ना, उनसे भी इंसान को हया होनी चाहिए। इंसान नंगा ना हो तो अब देखें कि क्या हमारे लिए जायज है कि फिर हम मर्दों के सतर के ऊपर नजर डालें। हमारे लिए भी जायज नहीं है, ना मर्दों के लिए जायज है वो मर्दों को ऐसों को देखें, ना किसी के लिए जायज है कि वो अपने इन हिस्सों को खोल ले। मगर जाहिर ही बात है, वही जैसे पहले बात हुई कि हमारा हर एक के ऊपर तो जोर नहीं है। अब ठीक है, मुसलमान इसको मानेंगे, इसके मुताबिक चलेंगे, लेकिन आप ये देखेंगे जो दूसरे हैं वो तो नहीं इस चीज की पाबंदी करेंगे, तो फिर क्या किया जाए? फिर अपनी खुद नजरों की हिफाजत की जाए कि हम भी ना देखें, ना ऐसे कोई सीन, ना ऐसी कोई चीज जिसके अंदर किसी मर्द का सतर खुला हो। ठीक है, नंबर टू इसका क्या है? एक तो सतर को छुपा के रखना, जैसे मैंने आपको बताया किसी के सामने ये ना खुले इतना सतर। ठीक है, अच्छा ये एक और इसमें रिवायत आपको बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्द के सतर को ना देखे और कोई औरत के सतर को ना देखे, ना मर्द के साथ एक लिहाफ में लेटे बरहना होके, और ना औरत के साथ बरहना एक कपड़े में लेटे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, यानी कोई गलत काम नहीं भी हो रहा तब भी कोई किसी के साथ एक कपड़े के अंदर नंगा नहीं लेट सकता, ना मर्द के साथ, ना औरत के साथ किसी। ठीक है, देखिए ये सारे आपको समझ आ रही ना, सद्दे जराए हैं सब, ये रास्ते रोके गए हैं। और फिर इसके अंदर दूसरी चीज जो आती है वो है, मैंने जैसे पहले भी बताया था, दो चीजें, ना उस जगह और ना किसी और तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरी करना, ये भी हिफाजत में आता है फर्ज की। यानी जिना करना उससे भी बचना, ये भी हिफाजत है। लवातत से बचना, होमोसेक्सुअलिटी से बचना, ये भी हिफाजत है फर्ज की। ठीक, फिर ना सिर्फ ये कि किसी भी ऐसे हराम जगह पर अपनी ख्वाहिश को पूरी करना, बल्कि किसी भी उस तरीके के अलावा जो बीवी के साथ हो, उस तरीके के अलावा किसी और तरीके से भी अपनी ख्वाहिश को पूरी करना, ये भी इस हिफाजत से निकल जाना है। समझ आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम दो चीजों की हिफाजत की जमानत दे दो, मैं तुम्हें गारंटी दे दूंगा जन्नत की, गारंटीड है तुम्हारे लिए जन्नत, जो अगर तुम दो चीजों की मुझे गारंटी दोगे कि मैं इनकी हिफाजत करूंगा। जानना चाहते हैं वो दो चीजें क्या है? एक जुबान और एक शर्मगाह। शर्मगाह ना तो एक्सपोज हो किसी के सामने कभी भी, और ना ही किसी ऐसी जगह इस्तेमाल हो जहां पे नहीं कर सकते, ना किसी ऐसे तरीके से इस्तेमाल की जाए जो कि नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताया कि किसी जिंदा या मुर्दा इंसान की रान को भी, थाइज को भी नहीं देख सकते, तो शर्मगाह तो देखना दूर की बात है। ऐसे लॉकर रूम्स होते हैं जिम्स में, ऐसी शावर्स लगे होते हैं जहां पे लोग नंगे ही नहाते रहते, ये नहीं अलाउड है कि अपने ये रान का हिस्सा भी एक्सपोज किया जाए। आप देखिए ना, इतनी तक को भी नंगा नहीं कर सकते। वो कहां ये आ जाती है, छोटी छोटी शॉर्ट्स पहन लेना, छोटे छोटे वो पहन लेना ऐसे कि जो जिसमें सारा ये हिस्सा रान का नजर आता, थाइस का नजर आता। अल्लाहु अकबर। तो इन दोनों के अंदर आप पहली चीज भी और दूसरी चीज भी हिफाजत में आती है फर्ज की। अब मैंने जैसे पहले भी एक दफा बताई थी ये बात कि बीवियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहरों की शर्मगाह की हिफाजत के लिए अपने आप को मतलब अपनी इसको जिम्मेदारी समझें। मर्द की तो जिम्मेदारी है ही है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, जो बीवियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शौहरों के लिए इस चीज को यानी इजी बनाए कि वो हिफाजत कर सके, ठीक है। और ये जिम्मेदारी कैसे है कि औरत अपने आप की ये ड्यूटी समझे कि मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं अपने शौहर के लिए। जैसे मैंने आपको वो हदीस बताई कि वो फिर कोई आदमी को कोई भी औरत अट्रैक्ट करती है, ये किसी की तरफ देखता है उसको अच्छी लगती, तो अपनी बीवी के पास है, और अगर बीवी अवेलेबल ही ना हो तो फिर क्या हो। इसी वजह से 4 शादियों तक की भी इजाजत दी गई ताकि कोई भी ये ना कहे कि ना जो मैं क्या करूं, मेरी बीवी तो ऐसे है या बीमार रहती है या उसका तो ये मसला है या वो है। नहीं, हर तरह से उसकी बीवी उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। इसी वजह से औरत के बनाओ सिंगार करने को भी उसके लिए एक पसंद किया गया कि वो अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार करे ताकि वो शौहर की नजरों में अट्रैक्टिव रहे और शौहर कहीं और नजर डालने से बचा रहे, क्योंकि उसकी नजरें आवारा तभी होती हैं जब घर के अंदर तो उसको कुछ मिलता नहीं है। और कई आदमी इसीलिए औरतों को मना करते हैं कि अब तुम हिजाब ना लो, इसलिए वो देखते हैं कि भाई घर के अंदर तो ये मैली कुचारी रहती है, बाहर जाते वक्त भी हिजाब ले लेगी तो हम इसको कब देखेंगे। कई औरतें कहती ना हमारा शौहर इधर उधर देखता है, इधर वो कैसे ना देखे फिर, इसलिए कि फिर अगर आप ही अवेलेबल नहीं है और आप ही उसके लिए बनते संवरते नहीं है तो फिर उसकी नजरें तो इधर उधर जाएंगी, फिर तो वो किसी और के ख्यालात में रहेगा। तो जब अगर उसको अवेलेबिलिटी घर में मिल रही है तो उसके लिए पाक रहना आसान है। वो ये भी एक आप जिना का दरवाजा बंद कर सकते हैं, टेम्पटेशंस का दरवाजा बंद कर सकते हैं। जबकि औरत अपनी इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझे कि नहीं मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है। देखें, आदमी का दिल लुभाना बीवी की जिम्मेदारी है। तो एक दफा आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास एक औरत आई, ऐसे ही बस मतलब ऐसे ऐसे हालत में थी, ना कोई तैयार हुई थी, तो उन्होंने पूछा क्या उस्मान घर पे नहीं है, यानी हैरत से पूछा कि तुम्हारा शौहर घर पे नहीं है। यानी उनके लिए एक बड़ी अचंभी बात थी, अजीब बात थी कि औरत अगर ऐसी हालत में है तो क्यों है, इसका मतलब इसका हस्बैंड नहीं है, क्योंकि जब अगर हस्बैंड हो तो फिर वो ऐसी हालत में इसको नहीं होना चाहिए। और हमारी तैयारी किस वक्त होती है, हमेशा बाहर के लोगों के लिए, शौहर के लिए नहीं होती। फिर वो शौहर जब उसकी नजरें कहीं और भटकती हैं और या कोई और मसले मसाइल में वो फंस जाता है तो फिर शिकायत होती है कि देखो ये तो ऐसे करता है और इसका तो सही नहीं है करैक्टर, या ये तो इधर उधर देखता है, या इसका तो ये अफेयर है। और कोई बेचारा अगर अपने आप को बचा के ही कहीं रखे, कहीं उसने अपने अपने आप पे कोई जबर ही किया हुआ, औरतें सोचें ये जाएगा तो जाएगा कहां, हम जैसी मर्जी रहे हमें क्या, ये तो इसके ऊपर गुनाह आएगा, वरना वो उसके ऊपर तो गुनाह आएगा तो उस बीवी के ऊपर भी गुनाह आएगा, जो कि आदमी को किसी और तरीके से अपने आप को अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए मजबूर करती है। तो इसके लिए अब हम ये करें कि जो हमने कपड़े रखे हुए हैं किसी ओकेजन के इंतजार में, उनको जरा हवा लगवाएं, उनको पहने। और मेरे ख्याल में कई औरतें सोच रही होंगी कि पहने क्या, वो आके पूछेंगे कि भाई खैरियत है, वो इसलिए पूछेंगे खैरियत है इसलिए कि वो एक अनबिलीवेबल चीज हो गई ना उनके लिए, यूनिक दिन आ गया, वो तो परेशान हो इसीलिए हो जाएंगे कि उन्होंने कभी पहले तैयार देखा ही नहीं कि मेरे लिए भी कभी ये तैयार होती है। अब जब रोज रोज होंगे तो फिर उनको परेशानी नहीं होगी। और बाज औरतों को ये होता कि नहीं तो उन वो तो कुछ नोटिस ही नहीं करते, नोटिस नहीं करें या नहीं करें, आप अपना फरीजा समझ के ये काम करें कि ये अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर एक समझ ले फर्ज रखा है कि मैं इसका दिल लुभाऊं, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, इसके लिए बनूं समरूं। मेरी तो बनना सवरना ही इस आदमी के लिए होना चाहिए, मेन जिसके लिए हमारा बनना सवरना होना चाहिए ना वो हमारा हस्बैंड है। आप देखें जब हम अपना ख्याल नहीं रखते, हम हर तरफ से फैल जाते हैं और कोई हमारे ख्याल नहीं है कि हम कैसे लग रहे हैं या हम क्या पहन रहे हैं या हम अपनी फिगर का कोई ख्याल है या नहीं है, हम सोचते बस हमने बच्चे पैदा कर लिए बस ये अब हमारे लिए जायज है, तो फिर वो इधर उधर नजरें भटकेंगी ना, जबकि इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है बाहर। खुद आप ये सोचें, बाज औरतों को ये शिकायत होती है उनके, मेरे हस्बैंड बड़ी डिमांडिंग है। बड़ी डिमांडिंग, ये शुक्र अदा करें कि वो आपसे ही डिमांड करते हैं, कहीं बाहर जाके अगर अपनी जरूरत पूरी कर रहे होंगे तो फिर आपको ही तकलीफ होगी। कम अज कम वो शौहर घूम के आता है तो आपके पास ही आता है ना। तो इस हिफाजत करने में उनके लिए तो अजर है, आपके लिए भी अजर है, अगर आप ये नियत करें कि मैं इसको, इस आदमी को बुराई से बचाने के लिए ये कर रही हूं ना, तो इसमें उनके लिए अजर है, आपके लिए भी है। कितना बड़ा अजर है कि गुनाह से आप किसी को बचा रहे हैं। और गुनाह मैं ये नहीं कह रही कि कोई जिना ही करता है, उसकी जो नजरें भी इधर उधर जाएंगी, क्यों जाएं जबकि मैं अवेलेबल हूं। तो भी ये जब आपकी नियत होगी ना, तो फिर देखें कि आपके लिए एक इबादत का ही अजर मिल रहा है, क्योंकि वो इस हुक्म पे अमल इसी सूरत में कर सकता है जब आप उसको फैसिलिटेट करें, जब आप उसकी मदद करें एज वाइफ, ठीक है। वरना बहुत जगह हैं जहां पे नजरें आवारा घूम सकती हैं, बहुत जगह हैं जहां पे इंसान अपनी जो इज्जत है उसको भूल के और यानी जिना में पड़ सकता है। तो इसलिए जहां पे हम ये आयात पढ़ते हैं ना, वहां पे इनको अमल करने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारी एज वाइफ जो हमारे ऊपर फराइज हैं, ये भी कुरानी का हुक्म है। कुरान हमें सिर्फ अच्छी अखलाक और ये और नमाज रोजा यही नहीं सिखाता, देखिए कहाँ तक हमारी प्राइवेट लाइफ में, जो बिल्कुल जिसको हम समझते हैं कि ये यहाँ पे किसी की भी नहीं रीच है, अल्लाह ताला वहां पे भी हमें सिखाता है कि कैसे रहना है। क्योंकि अगर ये चीज नहीं की जाएगी माशरे के अंदर, तभी बेहयाई पैदा होती है माशरे में, तभी आवारगी पैदा होती है माशरे में, तभी जिना आम होता है। और हम चूंकि पहले पढ़ चुके हैं इस सूरत के अंदर, हमने हद जिना भी हमने पढ़ी है, और इस सूरत के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाएंगी जिनसे इन चीजों से बचा जा सके। आदमी में एक ख्वाहिश है, एक अल्लाह ने उसके अंदर ये ख्वाहिश रखी है, ये उसकी जरूरत है कि वो इसको पूरी करे, और इस जरूरत को हलाल जरिए से ही पूरे होना चाहिए। और अगर हम इससे बेपरवाह रहते हैं और इस चीज को अपनी ड्यूटी नहीं समझते और अपना कोई काम नहीं समझते, तो ये गलत है। बाज औरतें कहती हैं कि हम इसीलिए बनते संवरते नहीं है ताकि ना हम अट्रैक्टिव लगे और ना ही हमारे पास आए, तो वो रिपेल करने के लिए ना, जैसे हमारे मुल्कों में मॉस्पेल लगाते हैं मच्छरों को रिपेल करने के लिए कि हमसे दूर रहें, तो वो गंदी मंदी रहती हैं ताकि जो ना हमारे करीब आए। ये गुनाह कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई नेकी नहीं है, बल्कि ये उसको भी गुनाह पे मजबूर करना है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को बनाए संवारे, अपना ख्याल इस नियत से आज से रखेंगे। अब हमें सब औरतों को बनने संवरने का तो शौक है, और औरत के अंदर भी ये कमजोरी है कि वो बनती संवरती, लेकिन हम इस नियत से अगर बने संवरेंगे तो देखे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम आया था, जिस वक्त वो तैयार होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रही थी खाना लेके, सलाम आया था अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो मतलब इसको दीनी फरीजा समझे, दीनी फरीजा नहीं आज तक समझा होगा शायद, वैसे ही समझा, दीनी फरीजा समझे। कभी भी हमारे अंदर से, एक बीवी के अंदर से किसी शौहर को कभी कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, ना कोई प्याज लहसुन की, ना कोई उसके जिस्म से, ना उसके कपड़ों से, ना कोई इस तरह से कि वो उससे दूर भागे, ठीक है। बल्कि जो ये इस फरीजे को अंजाम देगी उसके ऊपर भी अजर है। सहाबा कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब फरमाया कि इस चीज पे भी अजर है, जो इंसान अपनी बीवी से जरूरत पूरी करता है, तो वो हैरान हुए कि इसके ऊपर भी हमें अजर मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों, क्या अगर तुम किसी हराम जगह जाके अपनी जरूरत पूरी करते हो तो क्या उसके ऊपर गुनाह नहीं है? मैंने कहा, तो फिर आपने फरमाया, तो फिर जो बीवी के पास आए हलाल जरिए पे आए उसके ऊपर अजर भी है, और जिसके पास अपनी बीवी हो वो वापस मुड़ के बीवी के पास ही पहुंचे, कहीं और अपनी जरूरत को पूरी ना करे। इसी तरह जो औरत फिर अपने शौहर को इस चीज से मना करती है, नहीं मैं नहीं अवेलेबल तुम्हारे लिए, जो भी अपने रीजंस इधर उधर के एक्सक्यूजेस बनाती रहती है, लेम एक्सक्यूजेस जो कोई जेन्युइन एक्सक्यूज नहीं है, तो वो और उसका शौहर उसको बुलाए बिस्तर पर, तो उस औरत के ऊपर भी फिर सारी रात फरिश्ते लानत करते हैं। तो हिफाजत फर्ज की हमें ये समझना है कि उसकी जिम्मेदारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। गाली का अज कालम, ये ज्यादा पाकीजा है उनके लिए, जब निगाहों को झुकाओगे दिल गंदे नहीं होंगे, शर्मगाहों की हिफाजत करोगे, ये है तुम्हारे लिए पाकीजगी, ठीक है। पाकीजगी ये नहीं होती कि लोग तारीफ करते रहे कि बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत ये हैं, और अंदर पता नहीं क्या है गंद, ठीक है। पाकीजगी ये है कि इन दो चीजों का ख्याल रखे, जब मर्द औरत के साथ बात करें ना, नजरों के अंदर नजरें डाल के ना बात करें, नजरें झुका के बात करें। इसी वजह से फिर यहीं से फिर आ जाती है ना कि अगर हम अपनी गैदरिंग्स अलग रखें, मर्द अलग बैठे औरतें अलग बैठे, तो ये चीज बहुत आसान हो जाती है, गद्दे बसर बहुत आसान हो जाती है, बजाय इसके के साथ आमने सामने बिठा देंगे तो जाहिर है फिर नजरें भी पड़ेंगी और फिर कोई अच्छी भी लगेगी और कोई अट्रैक्टिव भी लगेगी। आप देखिए क्या ये इसमें तो कोई खैर समझने की ऐसी बात भी नहीं है कि एक आदमी पूरा दिन बाहर देखता है, खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे देखता है, खूबसूरत से खूबसूरत फिगर्स देखता है, खूबसूरत, अब उसको आके फिर अपनी बीवी अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर देखता है हसीन तरीन, जो उनका काम ही ये है कि वो दिल लुभाएं, उनका काम ही ये है कि वो अट्रैक्टिव लगे, उनके दिन और रात की मेहनत ही ये है कि हम सबसे खूबसूरत नजर आए स्क्रीन के ऊपर, उनके ऊपर ऐसी लाइट्स और ऐसा मेकअप और ऐसे सब चीज प्रोफेशनली की जाती है ताकि वो खूबसूरत नजर आए। जब ऐसी चीजें कोई आदमी देखेगा तो उसके घर में उसकी जिंदगी में क्या सुकून रहेगा? उसकी बीवी फिर जो मर्जी जतन कर लेना, वो उसको अच्छी नहीं लगेगी, कहेगा कि ये कहां और कहां, वो उसके दिमाग में वही हीरोइन बसी हुई है। इसीलिए गद्दे बसर का हुक्म है कि कितना भी पाकीजा आदमी हो, कितना भी कुछ हो, ये चीजें फैमिलीज को, ये चीजें घरेलू जिंदगी को मुतासिर करेंगी। और सोने पे सुहागा ये कि वो औरत अपना ख्याल भी ना रखती हो, फिर तो बिल्कुल ही हर चीज से पार हो जाएगी, मामला ही बहुत खराब हो जाएगा। और इसमें ये भी है कि मर्द औरतों की तरफ तो नहीं देखें ऐसी नजर के साथ, मगर मर्द मर्दों को भी नहीं देख सकते शहवत की नजर से। ये चीजें भी होमोसेक्सुअलिटी और ये चीजें इसीलिए पैदा होती हैं, यंग लड़कों को जब ऐसी नजर से देखा जाता है, औरतें औरतों को भी ना ऐसी नजर से देखें, और ना ही कोई मर्द किसी जानवर की शर्मगाह की तरफ देखे बदफेली करने के लिए, और बाद में आगे और इस मसाइल ये पैदा होते हैं इसी किस्म के। तो नजरें हम आजाद नहीं छोड़ सकते, खुद सोचे ना जुबानें आजाद हैं, ना कान आजाद हैं, और ना ही नजरें आजाद हैं। हम हर चीज में याद रखें हम अल्लाह की नजरों में हैं, इन अल्लाह खबीरुम बिमा यसनाउ, उसको खबर है जो भी वो करते हैं, जो भी दिलों के अंदर सोच रहे हैं, बातें दिलों ही दिलों में कर रहे हैं, जहन में क्या ला रहे हैं, नजरें किधर घूम रही हैं। साथ बैठा इंसान नहीं जान सकता इस बंदे की नजर उठी है तो इसने क्या देखा। बीवियां बहुत सोचती हैं कि हम शौहरों की नजरों की हिफाजत हम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि तुम किधर देख रहे हो, लेकिन उनको नहीं पता होता। मगर वो जो रब्बे कायनात है ना, वो अर्श पे वो जानता है कि कौन क्या देख रहा है और कौन कितनी हिफाजत कर रहा है अपनी शर्मगाह की। उसका खौफ जिसको होगा वो अमल करेगा इन पे, वो हर बात से बखूबी वाकिफ है। ये अगर एहसास साथ रहे ना तो फिर ये सारे काम आसान हो जाएंगे। और जिस दिन इस चीज को भूल गए कि उसकी नजरें मेरे ऊपर है, तो फिर हर तरह की आवारगी आ जाएगी। तो हया पैदा करने की जरूरत है अपने माशरों में। हमने पहले ये आयत पढ़ी थी कि जो बेहयाई को फहाशी को फैलाने का की कोशिशें करते हैं और इससे मोहब्बत करते हैं कि हाँ फहाशी फैले, तो फिर उनके लिए कैसा दर्दनाक अजाब है। और जब फहाशी फैलती है फिर नजरें भी आवारा होती हैं, फिर हिफाजत भी नहीं होती शर्मगाहों की। तो इन चीजों को अपने पल्ले बांधना है, ان چیزوں کو اپنے بیٹوں کو سکھانا ہے جو آج کی آیت ہے, یہ آخری آیت. اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ عورتوں کو کیا حکم ہے اور ان کو کیا کرنا ہے اپنے لیے, لیکن ان چیزوں کا اپنے شوہروں تک بھی یہ چیز کو پہنچائیں کہ کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. بیٹوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیونکہ جو نظروں کی آوارگی ہے اس کو ہمارے ہاں بالکل یعنی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, ہمیں اس کو کوئی ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے, بلکہ نظروں کو سمجھتے ہیں میری نظریں میں جہاں مرضی دیکھوں. نہیں, وہ اس کی ہے یہ امانت دی ہوئی جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے اور اس نے یہ ریسٹرکشنز لگائی ہیں اور ہمیں یہ فالو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, ہمیں اچھی بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ کوئی اپنا حق مانگنے کے لیے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہاں کی اللہ تعالیٰ شرمندگی سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون.